نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيرة النبي کے سلسلے میں غزوہ احد شروع کریں گے پڑھنا شروع نہیں ہوگی جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ پڑھیں گے پیج نمبر ہے 203 شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ بدر کی جنگ میں دشمنوں کو بہت زیادہ مکی کھانی پڑی اب وہ اس کے انتقام کی تیاری کر رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور چوٹ پڑ گئی جس پہ ہم نے اپنی پچھلی نشست کو پورا کیا تھا اب تو غصہ اور بھڑک اٹھا انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی اور رضا کارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا یہ کیا ہے والنٹیئر انہوں نے لکھ دیا کہ ہم ہر طرح کے والنٹیئرز ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف لڑائی میں ہماری مدد کریں گے احابیش کو بھرتی کیا یعنی بڑے بڑے گروہ بن کر اور جس طرح آپ کہہ لیں کہ فوجی ٹریننگ کے لیے لوگ جو تھے وہ نامینیٹ کیے جانے لگے رغبت بھی دلائی جانے لگی اور کبھی کبھی ڈرایا بھی جانے لگا اس کام کے لیے انہوں نے شاعروں کو یوز کیا پوئٹس کو شاعر تھے وہ اس کام میں بڑے ماہر تھے کہ جس کو لڑانا ہوتا یا جس کو ابھارنا ہوتا جس کو آج کے دور میں آپ کہیں کہ قومی نغمے گا گا کر لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو شاعروں نے یہ سب کام کیے 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جن کے پاس 300 اونٹ تھے 200 گھوڑے تھے اور 700 زرہے تھیں تقابل میں اگر ابھی سے آپ ایک کام کر لیں ہر جنگ میں دشمن کے پاس کتنے تھے اور مسلمانوں کے پاس کتنے تھے اگر آپ اپنی ایک بک کے بیک پہ لکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری جنگوں کے حالات سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں ان کو کیوں لے کے آئے بھڑکانے کے لیے جوش دلانے کے لیے اس دور میں عورتیں اس بات میں ماہر ہوتی تھیں کہ نغمے گا گا کر جس کو آپ کہیں گے ملی نغمے یا قومی نغمے بہادروں کے اندر ایک اس طرح کی روح پیدا کرتی تھیں سپہ سالار ابو سفیان تھے اور جھنڈا جو تھا وہ عبد الدار کے بہادر لوگوں کے پاس تھا خوب غصے اور غضب میں بھرا ہوا یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں کھلے میدان میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا جمعہ کا دن تھا شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اسے کیا پتہ چلتا ہے آپ ایک آنکھیں کھول کے رکھنے والے لیڈر تھے ایسے ہی نہیں تھا کہ پتہ ہی نہ چلے باہر کیا ہو رہا ہے اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے لہٰذا آپ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ایک فوجی لشکر تیار کیا جائے گا جب یہ لشکر پہنچ گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم دفاع کریں گے آپ نے پوچھا کیسے کریں انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر سب مسلمان خود کو قید کر لیں اور کسی کو مدینہ میں گھسنے نہ دیں مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر بیٹھے اب آج کی جیسے شہر ذہن میں نہ لائیے اس دور میں شہر ایسے ہی ہوتے تھے بعض دفعہ کہ شہروں کے باہر چار دیواری بھی ہوتی تھی تو اگر چار مورچے لگا کے بیٹھ جائیں لوگ تو اندر شہر میں نہیں آ سکتے تھے عورتیں گھروں کی چھتوں سے دیکھتی رہیں کسی کو تیر لگانا ہے یا کچھ بھی اس پہ کام کرنا ہے تو دور بیٹھ کے کرتے رہیں عبداللہ بن ابئی جو کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا غزوہ بدر کی فتح کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے اس سوچ کے ساتھ کہ میں نے مسلمانوں کو مسلمان بن کر نقصان دینا اس نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے وہ کیوں سچاتا تھا کیونکہ اندر سے خوفزدہ بھی تھا بزدل بھی تھا اور اسلام سے محبت نہیں تھی صرف مروت کے لیے جاتا آتا تھا کہنے لگا گھر بیٹھا رہوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے اس دور میں یہ بہت بڑی گالی سمجھی جاتی تھی کہ لو مرد ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہو لیکن کچھ لوگ جوان تھے جوانی کا خون بہت گرم ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو بزدل ہی ہے کہ ہم چھپ کے بیٹھ گئے چلیں باہر چلتے ہیں کھلی جگہ پہ دو دو ہاتھ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ وقت پھر کریٹیکل تھا آپ سوچئے کہ ایک لیڈر کے سامنے ٹیم کے آدھے لوگ کہتے ہیں یہ کام کر لیں تو آدھے کہتے ہیں نہ کرے تو اب کر لیں تو نہ کرنے والے ناراض نہ کریں تو کہنے والے ناراض تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے میں پھر جو بات درست ہوتی تھی اس کو مانتے تھے بعض دفعہ کسی ایک بندے کی رائے درست ہوتی تھی تو آپ اس وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ میجورٹی از اتھارٹی بلکہ آپ اس کی بات کو مان لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ باہر جا کے بات کی جائے لہٰذا آپ نے باہر جا کے دفاع کرنے کی بجائے کھل کے لڑائی کرنے کی بات کی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک دستہ مہاجرین کو ملا جس کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا دوسرا قبیلہ اوس کا جس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو ملا اور تیسرا گروہ جو تھا حضرت کا تھا آپ کہیں کہ 3 گروپس بنا دیے مسلمانوں کے और तीसरा हज़रत का था जिसका झंडा हज़रत हबाब बिन मुनज़र के पास था। असर की नमाज के बाद आपने जबले ओहद का रुख किया। शहीद हैन के मुकाम पर पहुंचकर एक जगह अंसारी करीब करीब की लश्कर का मुआयना किया, जो छोटे थे इनको वापस कर दिया। यहाँ बड़े खूबसूरत वाक़यात हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शौके जिहाद में आ गए थे, कहा आप तो छोटे हैं, तो वो अपने पाँव की जो अंगूठे होते हैं ना उसके ऊपर खड़े होके दिखाते हैं, कहते हैं देखिए अल्लाह के नबी हमारा कद तो इतना लंबा है। ये कौन सा जज्बा था आज हम अपने जवानों को देखें, और ये आपको तो अर्ली टीन्स है 15, 16, 17 साल के, हम सब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जवानों को देखें, पेट का पानी हिला के नहीं पी सकते। एक हाथ में चिप्स है तो दूसरे में रिमोट कंट्रोल है। ऐसी नस्लें अगर पैदा की तो याद रखिए कि चंद साल के बाद मुसलमान हैंडीकैप हो जाएंगे। जिस माँ ने अपने बच्चे को बचपन से बहादुरी और चुस्ती नहीं सिखाई, उस माँ का बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा। हम बच्चों को बहुत भी डांटते हैं ना तो अपनी खिदमत के लिए, बूढ़ी माँ काम कर रही है, बूढ़ा बाप कर रहा है, तुम बैठे हो, लेकिन जिस दिन आप उनको इस्लाम के लिए रग़बत दिखाएंगे ना, आप देखिएगा वो आपके लिए भी अच्छे होंगे। बहरहाल ये तो कला गिशु है। राफे बिन हुदैज छोटे थे, इनको कहा कि तुम भी निकलो, कहने गए अल्लाह के नबी मैंने नहीं जाना, आप मेरा टेस्ट ले लें, मैं तीर बहुत अच्छे चलाता हूँ। कहा ठीक है, तीर चला लिया। अल्लाह के नबी ने कहा ले चलो। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ लोगों में ना छोटी उम्र में भी स्किल्स ज़्यादा होती हैं। इस पर सुमरा बिन जुद्दुम ने कहा मैं तो राफे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसे पिछाड़ सकता हूँ, अच्छा कुश्ती कराओ। आपने दोनों में कुश्ती कराई, वाकई सुमरा ने राफे को पिछाड़ दिया, तो फिर सुमरा को भी इजाज़त मिल गई। क्या मंजर होगा वो उस वक्त, आसमान ने क्या देखा होगा। आज हमारे इस उम्र के बच्चे जाने की जिद करते हैं, लेकिन कहाँ, हम सबको पता है। और कुछ नहीं तो इस दौर का तो सदमा ही खाना पीना है, मैकडोनल्ड जाना है और KFC जाना है और दिस एंड दैट, और खाना पीना बहुत है तो सैर और तफरी। बच्चों को मकसद दें। देखिए आज भी ओहद के हालात बने हुए हैं, आज कोई मुख्तलिफ हालात हैं बदर से और आगे तबुक के जो आप पढ़ेंगे। आज से ऐसी नस्लें तैयार करें अगर आप चाहते हैं ना कि आने वाली ये जो सदी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आने वाले चंद सालों में आपके बच्चे किसी काम आए। तो आज का वो दौर है, मैं पूरे शऊर से कह रही हूँ आपको, आज जिस दौर में आप माएँ हैं ना, आपकी गोदों में बच्चे हैं 8, 10, 9, 12 साल के अब होने वाले हैं, ये बच्चे काम आने हैं इस वक्त। हमने इनको ट्रेनिंग दी होगी ना तो इंशाल्लाह सीने पे गोली खाएंगे, और अल्लाह ना करे अगर हमने इनको नहीं दी तो ये पीठ पे ना गोली खा के बैठे। आपने सुना होगा कि जिन मुल्कों में हम रहते हैं वहाँ लोग ज़बरदस्ती ट्रेनिंग पे बुलाते हैं, लड़कों को 1 साल लगाना पड़ता है। कल मेरे इल्म में ये बात आई कि अब उन्होंने लड़कियों के लिए भी लाजिम कर दिया, जिन्होंने भी रिवायत दी वो भी सुन रही हैं इधर इस वक्त। और सबसे बड़ी जो दुख की बात थी कि हमारी मस्जिदों में आके ऐसी बातों पर रग़बत दिलाई जा रही है कि लड़कियों को भी भेजें इस दिफा की तरबियत के लिए। क्या होगा आज वो सिखाएंगे ना, कल खुदा न खास्ता कोई वक्त ऐसा पड़ गया, और भी और पड़े हुए और अभी भी वो ऐसे हालात बनते हैं, वो आपके बच्चों को किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों के। तो आप याद रखिए कि उनको अपने मुल्क के दिफा की इतनी फिक्र है, तो हमें अपने इस्लाम की फिक्र नहीं है। कल किसी से बात हो रही तो मैंने कहा कि आपको पता है कि मुल्कों में फ़ौज होती है ना, पाकिस्तान की फ़ौज इतनी, इंडिया की फ़ौज इतनी, एक ख़ास ग्रुप का नाम है फ़ौज, बड़ा मज़ा आता है आर्मी में जाना है, वो एक ख़ास वर्दी पहनते हैं। मैंने कहा कि इंशाल्लाह जब मुसलमान मुल्क बनेगा दुनिया में कोई, तो वहाँ हर शहरी फ़ौजी होगा। जवानों में ये सारी ट्रेनिंग लाजिम थी, और आप देखिए अभी आप सुन ही रहे हैं ना, गज़वे बदर हुई या बहुत होने वाली, आप सुन रहे हैं अल्लाह के नबी ने कोई कहा किधर है वो फ़ौज वाले कमांडर, उनको बुलाओ, चीफ किधर है, वो स्क्वाड्रन लीडर किधर है, नहीं, हर बंदे चलता था। इस्लाम की तड़प दिल में आएगी ना तो हर बंदा वॉलंटियर है, हर बंदे का कॉज सेम है। सच्चे दिल से आप दीन की खिदमत करनी शुरू कर दें आज भी, सच्चे दिल से, बग़ैर किसी नाम के दिफा के या बग़ैर किसी के लालच के, दुनिया के आपको इतने वॉलंटियर्स मिलेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह इतने लोग कहाँ से आ गए। वजह ये क्या है कि लोगों के दिल में खैर है, वो चाहते हैं कोई काम करवाने वाला हो, हम करने को तैयार हैं। और अगर लोगों को पता चले कि आपको तो अपनी ज़ात चाहिए, आपको तो अपने नाम का झंडा गाड़ना है, और आप तो एक मसलक के प्रमोटर हैं, और आपके तो कोई अपने ही कुछ इंटरेस्ट हैं, तो फिर लोग भाग जाते हैं। आप पैसे मांगेंगे लोग भी आपसे पैसे ही मांगेंगे, आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपके सामने वाले सारे पैसे के लिए आएंगे और पैसे के लिए चले भी जाएंगे। इस तरह के बेलौस साथी कब मिलते हैं, जब एक कॉज होती है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। आज अगर हम दीन वाले इस बात को समझ जाएं, वल्लाही आज कितने लोग जो अपने टैलेंट को गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका टैलेंट इस्लाम के रास्ते पे लग जाए। मैं मान ही नहीं सकती कि आज के दौर में मुसलमान अच्छे नहीं और उनका दिल नहीं करता और वो करना नहीं चाहते। कल की मैं आपको अपनी बात सुनाती हूँ, और भी बहुत कुछ हुआ दिन में, और सारा दिन थकने के बावजूद एक आदत हो गई हुई है, हाथ में सेलफोन होता है, इस पर ईमेलें होती हैं, तो मैं बस जब भी मौका मिलता है दुआएं वगैरह पढ़ी कुछ, तो मैं चेक ऐसी नज़र देख पड़ती नहीं सारी, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियसिटी देखती हूँ। तो रात कल इतना हमारा हेक्टिक डे था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र भी था बीच में, नई क्लास भी एक शुरू हुई, सब कर करा के, बहुत सारे साथी माशाल्लाह उन्होंने अपना हिस्सा उसमें डाला। तो रात को मैं सारे कामों से फारिग होकर लेटी, तो लेटते हुए मैंने बस ऐसे ही सोचा कि लो मैं एक दफ़ा ईमेल चेक कर लूँ कि नहीं है। मैंने ईमेल देखी ना, तो उसमें मुझे तीन, और नाम से और टाइटल से पता चल जाता है, यकीन करें मेरा दिल, जिसको कहना चाहिए ना कि बंदे की सारी थकन उतर जाए, कुछ नाम और कुछ टॉपिक जो मैंने असाइन की हुई थी चीज़ें, एक की दूसरे की तीसरे की, कि मेरे जुबान पे आ गया। मैंने कहा अल्लाह इतने प्यारे साथी, सिर्फ मुंह से बात करके मैं भूल जाती हूँ, और वो चंद दिन के अंदर वो काम करके यूं ले आते हैं। इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग, दिल करता है कि सजदे से सर न बंदा उठाए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये आजमाइश तो नहीं है हमारी, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा हमारे पास है, एक काम है उसका, लेकिन वो उस काम में अल्लाह के हुक्म से माहिर है। कई ऐसे हैं जो बहुत सारे भी काम करते हैं माशाल्लाह, लेकिन एक बंदा है उसको एक काम दिया वो कर रहा है, और दिन रात कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के काम है वो खुद कराएगा, हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। आपके शहर में आपका काम है, आपको रास्ता दिखा दिया है, अब ये आपकी खुशी, आप इस स्कूल को कहाँ ले जाएं, और आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको जहाँ मर्ज़ी नीचे कर दें। तो अल्लाह के काम अल्लाह करवाता है। ये सहाबा के अंदर जो तड़प थी ना, ये सच्चाई की बुनियाद पे थी। माएँ सच्ची थी, उन माओं के पार्लर्स पे टाइम नहीं होते थे, उन माओं को जाके वर्जिशें करने के लिए घंटों मशीनों में नहीं बैठना पड़ता था। वो बच्चों के अंदर दूध के साथ ही ये चीज़ डाल देती थी कि इस्लाम 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 इस्लाम, इस्लाम का दिफा, इस्लाम को पीछे ना दिखाना, तुम इस्लाम के बच्चे हो, तुम जंग के बच्चे हो। और अल्लाह के नबी का भी जिक्र सरे राह ही आता था, जिसको इस्लाम से प्यार होगा उसको हर इस्लाम वाले से प्यार होगा। तो दुआ करें कि आज हम अपनी नस्लों को ज़रा ठीक तरह से ट्रेन कर सकें। बहरहाल दोनों को साथ ले जाया गया। एक तरफ देखिए बड़े बड़े हैं जो जान बचाते फिर रहे हैं, कह रहे हैं शहर में बैठ के लड़ते हैं, और यंग खून जहाँ से आपको जवानी का कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, यूथ का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सर चढ़ के बोलता है। बहरहाल इसी शहीन के मुकाम पर आपने मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ी, वहीं रात गुजारी। लश्कर की हिफाजत के लिए 50 पहरेदार मुकर्रर किए गए, और आखिरी रात में फजर से पहले कूच किया गया। ये देखिए यहाँ से, अब ये एक एक चीज़ जो है ना, ये हिकमत अमली है। सुबह में नहीं निकले, रात को निकले, और अल्लाह के नबी और अरब लोग वाकई रातों को सफ़र करते थे, क्योंकि रात को हदीस में आता है कि ज़मीन सिकुड़ जाती है, और आज साइंस ने भी ये बता दिया। ठंडी होती है ना चीज़ तो श्रिंक होती है, गर्म होती है तो फैल जाती है। आप कोई एक गज कपड़ा, कोई ऐसी कोई चीज़ पिघलने वाली गर्म रख के देख लें, गर्म होगी तो उसमें चंद सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ चुका होगा। रात को आपको पता है कि हमारे जिस्म का कद बदल जाता है, क्या कुछ होता है हमारे जिस्म पे हमें तो पता ही नहीं है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर यह है कि रात के वक्त आप सफ़र करते थे, और शौत नाम की एक जगह पर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी। रात जागे कि नहीं जागे, क्या मुसीबत है, रात को भी नहीं सोए जी, अब हम रातें भी हमारी ऐसी हैं, फजर से पहले उठना है, तौबा 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 तौबा। ये किसका दिफा कर रहे हैं, इस्लाम का। और वहाँ तो जंगे थी, हमें तो जंगे नहीं, हमें तो सिर्फ उठ के कलम चलाने पड़ते हैं ना, कोई स्केड्यूल्स बनाने पड़ते हैं ना, कोई अपने लिए लेके बैठना पड़ता है। मैं 2 दिन पहले की बात सुनाती हूँ आपको, मेरे हाले परसों की बात है। ऐसे ही फजर की नमाज थी तो पढ़ी, उसके बाद आदत है, दिल चाहता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लूँ। ज़ाहिर है आजकल इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं दिमाग में कि अगर लिखे हुए ना हो तो मुझे याद ही ना रहे कि पता नहीं अभी क्या करना है, और एक काम करके फारिग तो जहन से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे पे लग गए। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा लाओ ज़रा मैं बैठ के अपने जहन में सॉर्ट आउट करूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह झूठ ना बोला, 1 घंटा गुजर गया मुझे वहीं बैठे बैठे। और एक चीज़ हाँ ये भी ठीक, इधर ये दूसरी, और सिर्फ प्रोजेक्ट्स, जो चीज़ें जिसको इंस्ट्रक्शन देनी, जिसको कुछ कहना, जिससे कोई काम, कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ अपने माइंड में उनको सॉर्ट आउट करके 1 2 3 करके ऑर्गेनाइज किया कि मेरे से कोई चीज़ रह ना जाए जो मेरे जहन में। तो मैं सोचूं कि इतना वक्त गुजर गया मैं बैठी हुई इधर, तो मैंने कहा अल्लाह इसको भी तो इबादत में लगा, क्योंकि तेरे दीन के लिए है ना, गम भी तो, हम भी तो, खुशी भी तो यही है। बिस्तर पे भी बंदा इसी सोच से सोता है कि थोड़ा सो जाए ताकि सुबह उठ के फ्रेश होके काम करें। तो याद रखिए, सुकूत वाली जिंदगी जो है ये मौत है। आप देखिए कि बहरी जहाज समंदर के किनारे पे खड़े रहे, कितने महफूज हैं। कभी कोई जहाज डूबे, अगर बंदरगाह पे उसको रस्सियों में रखा हो, 10 साल भी एक जहाज खड़ा रहे, सिक्योर है। लेकिन वो जहाज बंदरगाह पे खड़ा करने के लिए नहीं बने, उसको समंदर में जाना है। समंदर में जाएगा तो खतरे भी हैं, डूब भी सकता है। वही जहाज डूबते हैं ना जो समंदर की मौजों में जा रहे हैं। तो जिंदगी हरकत का नाम है। मैं और आप अगर सामित होके और साकित होके दुनिया से चले गए, हम इसलिए नहीं बने। साए खून व साए हाथ। और आप देखिए, जितने बड़े आपकी ज़िंदगी में चैलेंज होते हैं ना, आपकी सोई हुई सलाहियतें जागती हैं। खतरे और चैलेंजेस ज़िंदगी को गर्म रखते हैं। मैं वीकेंड क्लास के बच्चों की टीचर से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, आप बच्चों को यूं लेके बैठ के ना बिठा के पढ़ाएं, ये सो जाएंगे। आप इनको काम दें। ओके, घड़ी देखे 10 सेकंड है, इस 1 मिनट के अंदर चलो जाओ तुम एक गाड़ी बना के लाओ, गाड़ी की तस्वीर बनाओ। चलो जाओ यहाँ से रिसेप्शन तक, आप 10 सेकंड में, आप में से कौन रिसेप्शन से एक बुक लेके आता है? आप देखिए बच्चे ऐसे भागेंगे कि एक दूसरे से गिरने का खतरा होगा। चैलेंज, अपनी ज़िंदगी को गोल दें, टाइम मुकर्रर करें। आप सब एक काम करें, अपने काम करने का वक्त नोट करें, मैं किस काम में कितना वक्त लगाती हूँ। जो बेसिक काम है ना आपके ज़िंदगी के, हर एक के होते हैं। सो के उठते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं, सबसे पहले तो इसी से शुरू कर लें। और अगर घर में 3-4 वॉशरूम है तो अल्लाह की बना, ये शुक्र है कि एक बाथरूम होता है, तो फिर बाहर वाले नौ कर करके बुला ही लेता है कि निकलो अल्लाह के बंदे, हमें भी जाना है ना। और हम किसी को टर्न नहीं देते, फजर से पहले सबको देते, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, मैं ज़रा सो लूँ। आखिर में मैं बहुत सेक्रीफाइजिंग हूँ, और सीरत से भी तो अभी सार पढ़ रही हूँ ना, तो तुम सारे बाथरूम में जाओ, मुझे चाहे सुबह तक वारी ना देना, मैं सो लूँ। और हाँ, इस तरह होता है ना। वॉशरूम में कितना वक्त लगाती हूँ, लिखें। खाने के लिए बैठे तो कितना वक्त लगा दिया, फ़ोन कॉल, कपड़ा इसी कर। बस आप यकीन करें, मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऊपर से अगर कोई हमारी वीडियो बना रहा हो जो हमें नहीं पता, तो स्लो मोशन, यूं उठना, सबसे प्लेट उठाई, यूं चलते चलते, फिर यूं रखा, फिर ऐसे किया, फिर खिड़की खोली। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। एक मैंने कहीं शेयर किया था इन्हीं सेशंस में, टाइम मैनेजमेंट में, और पूरे उन्होंने बताया हुआ था कि हम सारी ज़िंदगी में कितना वो किस में लगा देते हैं। वॉशरूम का मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि एक औसत दर्जे के लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अगर 60-70s करें, तो उसमें शायद 2-2.5 महीने जो थे वो सिर्फ वॉशरूम के गुजर जाते हैं। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा हरकत में रखना चाहिए, फिर इससे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, शौत तक पहुँचे, फजर की नमाज़ पढ़ाई। यहाँ अब्दुल्ला बिन उबई अपने दिल की बात छुपा नहीं सका। दिल में तो खौफ था ना कि जंग के लिए जाऊँगा, और इसकी तो ये पहली जंग थी ना, लिहाजा इसने वहां जाके कहा, ये क्या बात है जी, मैंने तो आपको कहा था मदीना में रह के मुहासरा करेंगे, तो आप आ गए, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। तो कोई पूछे कि फिर आए क्यों थे आप घर से? याद रखिए, मुनाफिक ज्यादा देर नेकी के काम पे नहीं चल सकता, चलता है फिर रुक जाता है बीच में। आप पढ़ेंगे, वह अकदा का लफ्ज आता है कुरान पाक में, जिसने दिया आता, वह अकदा, काम करते करते रुक जाना। कभी आपकी घड़ी रुकी है? आप कहते हो अच्छा अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो 10:30, फिर आप कहते हो अच्छा सेल खत्म हो गया। नेकियों के कामों में शुरू में जाना, पहले दिन निकलना, बड़ी खुशी होती है। आज ओपनिंग है, जा रहे हैं आज ओरिएंटेशन, हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता मोरल डाउन होते हैं, और फिर लोग कहते नहीं अब मुश्किल हो रहा है, नहीं मैंने बता दिया था कि अब मैं नहीं जा सकूंगी, एक लाइन लिख के कह देंगे जी कल से हम अवेलेबल नहीं। क्या मतलब है आपको? अगर पायलट भी यही बात कहने लग जाए ना जहाज में बैठा के, सॉरी मेरा मूड खत्म हो गया मैं जा रहा हूं, तो सारा जहाज डूबेगा। तो इंसान को नेकी करते करते रुकने से बेहतर यह है कि ये दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जो नेकी मैं करती हूँ ये ना खत्म हो। यहां आके रुका, ये निफाक खुल गया, शुरू करा बंदे ने, और जब उसके अमली तकाजे हुए, जाहिर है चला ये भी फजर से पहले इसको भी उठना पड़ा, चला भी इतनी दूर जाना पड़ा, इसने कहा नहीं ये तो बहुत लंबा खाता है, खैर मैं नहीं जाऊंगा, और खुद नहीं गया, 300 लोगों को साथ लेके गया। मैंने बड़े शौर से 3 के लफ्ज़ को लंबा किया। एक ईंट आप निकालते हैं ना दीवार में से, करके देख लें अपने घर की दीवार, क्या सीमट उखेड़े, और उसमें से सिर्फ एक ईंट आपके मैंने निकालनी है, आप देखिएगा उसके साथ चार छः हिलेंगी और उनके साथ होते होते हल्के हल्के हो सकता है कि पूरा एक बड़ा होल बन जाए। कोई बंदा दीन से अकेला नहीं जाता, क्योंकि वो अपने जाने की अपनी दोस्तों को तो दलील दिए कि इसने भी कहा होगा देखो अल्लाह के नबी ये कोई बात है, अभी 1 साल नहीं हुआ इतनी जंगें हमारे ऊपर लगा दी और बाहर जा रहे हैं मर खप के आ जाएंगे हम सारे। दूसरे ने कहा हाँ वाकई मुझे भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा काम है मुझे भी। अच्छा हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है चलना, चलते हो? मैं चलते हूँ। चलो 1 से 300 हो गए, यहाँ से क्या पता चलता है? गलत से गलत काम करने वाला भी अपने साथ साथी बना लेता है। हमारे यहाँ आज क्या बातें होती, कहते लोग फलां गलत हैं इतने लोग हैं उनके साथ, लोग फलां आपका मतलब कि वो ठीक नहीं है फिर इतने लोग उनको क्यों सुनते हैं उतना साथ क्यों देते हैं। तो यहाँ देखिए अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथ 300 बंदे मिला सकता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग नहीं होने चाहिए कि जिनके पास हक था सच्चाई थी। अब ये 300 गए तो जो बैठे थे उनके भी रास्ते, ये ऐसे ही जैसे आप सब अभी इत्मीनान से बैठे ना, तो यहाँ से एक बंदा उठे सामान समेटे पहले तो सबके सामने, तो सारे देखेंगे अच्छा ये भी जाए। फिर वो जब उनके साथ उठ के बैग उठा के जाएंगी ना तो दो चार और घड़ी देखेंगे कि अच्छा वो मेरी भी तो नहीं कोई अपॉइंटमेंट, अच्छा मेरे भी तो नहीं बच्चे के टाइम हो गया स्कूल का, फिर आधे दिमागी तौर पर वो भी चले जाते हैं। यही हुआ कि जब वो गए तो मुखलिस कबीले थे बनू सलमा और बनू हारिसा, लेकिन दूसरों को जाता देकर इनमें भी कमजोरी आ गई। करीब तक ये पलट जाते लेकिन अल्लाह ने इनको साबित कदम रखा। इसको हाईलाइट कर लें और अल्लाह से दिल की गहराई से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे मरते दम तक दीन से ना हटाना। देखिए दीन के नाम पे कोई कहीं भी काम करता है ना, दीन का नाम है और इखलास है, सही तरीका है। आप किसी के साथ भी काम करें आपको पता चल गया ना कि ये सही दावत है। अब इसमें कमी हो बेशी हो, आपको कोई ज्यादा काम दे, आपको इज्जत दे, आपको ना दे, लगे रहे। मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे शादी होने से पहले माँ बाप कितनी परचोल करते हैं ना कि लड़के में ये भी खूबी हो वो भी हो, हर एक का दिल होता है कि कोई खामी ना हो। जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या कहते हैं, अब इधर ही रहो, अब इधर ही रहना, बस अब क्या, अब तुम बस चुप करो, अब जो भी अच्छा बुरा तुम्हारा नसीब यही था। दीन के नाम से जो हमारी नस्बतें जुड़ती हैं ना, ये इससे भी बड़ी नस्बत होती है। क्यों? कोई बंदा जब दीन के किसी नाम पर काम कर रहा होता है ना और जब उसको छोड़ता है तो कई लोगों को मौका मिल जाता है कि कोई गड़बड़ी होगी फिर अकेले में बैठेंगे। कल मुझे किसी ने बड़ी मज़े की बात सुनाई हमारे बारे में, स्कूल के बारे में, वो सुनाते हुए खुद भी हंस रही थी, तो मैंने कहा शुक्र है आप आपको समझ है। यानी किसी ने उनसे बड़े प्यार से बात हुई कि मेरी बेटी इधर जाती है, और वो कहने लगे दीनदार हैं कुछ बेदीन लोग तो ऐसी बातें करते हैं, तो कहा तुमने भेज दिया अपनी बेटी को उधर? यानी उन्होंने इनसे ज़रा दुख सुख किया कि नूरुल कुरान पे पढ़ने भेजा, तो कहती मैंने उन्हें कहा क्यों क्या वो कोई गाने बजाने सिखाते हैं? नहीं, उनका कीदा ठीक नहीं है। कहती मैंने उनको ऐसी सुनाई बात के फिर चुप हो गई, और बहुत दीन का काम करने वाले लोग हैं वो। मैं हैरान हो गई, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके जहन में गलतफहमी कोई होगी तो उन्होंने कह दिया, और लोग फिर बात सुना भी देते हैं। तो याद रखिए कि दीन के काम से हटना तलाक होने से भी बड़ा फितना फैलाता है। पहले सोच समझ के दीन का साथ दें, और अगर खुदा न खास्ता गलतफहमी आप में से किसी को अपने शौहर पे शक पड़ जाए या ससुराल से कोई गड़बड़ हो, पहले दिन छोड़ के आ जाते हैं, सीधा कमरे में बैठे दरवाज़ा बंद करें, कहें जी मियाँ साहब मुझे आप पे शक है, मेरा शक दूर करें, अम्मी जी मुझे पता चले आप मेरी बुराई करती हैं, आप पहले मेरे साथ बैठे, अंदर बैठ के आप बात कर ले। किसी दीन की जगह पे आपको काम करते हुए कहीं कोई रखना लगे, कोई ऐसी वसवसा, शैतान है, नए पुराने लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं कि ये नए लोग हैं तो ये पुराने हैं, ये आगे नहीं आते, ये आने नहीं देते, ये कहानियाँ होता क्या है कि वो फिर दिल में अच्छा बस अब पीछे ही रो तो अच्छा है, कभी ऐसा ना करें, शैतान बहुत दुख देता है। याद रखिए कि मैंने एक जुमला पीछे से लिखाया था आपको तफसीर में, आप लोगों भी को भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुनाएंगे कि किस तरह से जब टीम छोटी होती है ना तो उसको बाहर से खतरा होता है। जैसे रोटियां बना रहे हैं ना आप, देखिए छोटी सी रोटी है तो बाद दफा पेड़ा हाथ से गिर जाता है, रोटी हाथ में नहीं पड़ी नीचे गिर गई, लेकिन जितनी रोटी बड़ी होती है ना वो अंदर से टूटनी शुरू हो जाती है। टीम छोटी होती है ना, थोड़े से लोग सिलेक्टेड, तो बहुत आपस में दोस्ती प्यार होता है, और बाहर वाले उस वक्त आपके दुश्मन होते हैं कि आपको पनपने नहीं देना, लेकिन जितने ज्यादा लोग टीम में आ जाते हैं ना उतने फिर अंदर ही रखने, आपस में शैतान का काम ही तो ये है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस वक्त नहीं पता था, अल्लाह को पता था कि अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में खोट है, और याद रखिए जिसमें खोट होता है ना वो ऊपर आता है। अभी मैंने ये बात की ना तो मेरे जहन में एक तस्वीर आ गई, कभी आप दाल या चने भिगोएं पानी डालें तो भला क्या होता है, कुछ चने ऊपर आ जाते हैं, आपको पता है उसके अंदर कीड़ा होता है, वो चने सबसे ऊपर आ जाते हैं, वो ऊपर तैरते हैं, आप खोल के देखेंगे उसमें या कीड़ा होगा या घुन लगा होगा, फिर वो पानी के साथ बह जाते हैं। अंदर खोट आता है तो आप टूटते हैं, बाहर से कभी कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन उबई के अंदर खोट था, पहले ही हुलारे पे गुजर गया, और देखिए अल्लाह के नबी ने उसको कुछ नहीं कहा। ओहद से लेकर तबूक तक आप देखिएगा अब ये इस्लाम के अंदर क्या क्या करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना इसको मौका दिया। बहरहाल वो तो चले गए, बाकियों को अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा ये बताइए कि अब्दुल्ला बिन उबई ने भी जाने का इरादा किया, और बनू सलमा और बनू हारसा ने भी चाहा, उसको अल्लाह ने नहीं रोका, इनको क्यों रोक लिया? इसका जवाब एक जुमले में है, उसका दिल खोटा था, अल्लाह ने कहा जाते हो 100 दफ़ा, जो आज के जाते कल जाओ, कल के जाते आज जाओ, रास्ता खाली करो, कुर्सी छोड़ो ताकि कोई और आए। और बनू सलमा और बनू हारसा के दिल में खोट कोई नहीं, तो वो देखा देखी बिदक, जैसे बच्चे भी हमारे होते हैं ना, दूसरों को देखा देखी जिद करते, आप एक डांटते तो चुप करके बैठ जाते हैं, राइट? तो आपके दिल में अगर खैर होगी ना तो ऐसे मौके आएंगे भी कि आप अलग हो जाएं, छोड़ दें इस्लाम को, दीन को, लेकिन अल्लाह आपको बचा लेगा। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बंदे पे बहुत बड़ा फजल होता है। खैर मुसलमानों की तादाद पहले 1,000 थी, अब कितनी रह गई? 700। काफिर कितने थे? 3,000। पहले 1/3 था, अब एक किस्म का एक एक मुसलमान के आगे चार चार बंदे आ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लश्कर को लेकर आपने दुश्मन को मगरिब की सीमत छोड़ते हुए एक मुख्तसर रास्ते से ओहद की जानिब पेशकदमी की, और ओहद की बुलंदियों को पुश्त की तरफ करते हुए वादी के सिरे पर वाके ओहद पहाड़ की घाटी में नजूल फरमाया। नोट करें, घाटी मीन अंदर, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पिछली जंग में गजवे बदर में बताया था कि बदर के कुओं के इर्द गिर्द ऐसी जगह थी कि बस वहां सब घुस के बैठ सकते थे। यहां से आप बस इतना अपने लिए समझ लें कि जगह का इंतखाब बहुत जरूरी होता है, दुश्मन को अगर शिकस्त देनी है ना तो जगह का इंतखाब बहुत अहम होता है। आपने इस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जगह रखी कि पीछे से मुसलमान महफूज हों, सिर्फ एक छोटा सा दर्रा खुला हुआ था जिधर से दुश्मन के आने का रास्ता था। आगे आप सुनेंगे कि वहां आपने 50 लोगों को मुकर्रर कर दिया। लेकिन यहाँ मुझे अमल की एक बात अल्लाह ने दिल में डाली, वो शेयर करती हूँ, ये जगह के चूज करने की। बस जब आप किसी जगह दर्स देने जाते हैं, आपको भी लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह, जहां भी आप जाएं या अभी भी जाते हैं, पहले जाके एक नजर डालें माहौल पे, कमरा ठीक है? जिंदगी में ये बहुत अहम होता है कि आप देखें कि चीज़ें आपकी कहाँ पड़ी हुई हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कई जगह परेशान होते हैं, रिश्तों के मामले में, ख़ानदान के मामलात में, माल के मामले में, जाके आज चेक कीजिए चीज़ें गलत जगह पे तो नहीं पड़ी हुई। कुछ रिश्ते के कुछ एक खास हद तक के तकाजे होते हैं, हमने उसको उससे ज़्यादा जगह दी होती है, और एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ के हक है, हम हक भी नहीं दे रहे होते। तो आप देखेंगे जहाँ भी मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी है ना, मैंने हक नहीं दिया। मिसाल है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अर्लीस्ट कोशिश करते हुए मगरिब से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ, ये मेरा हक है, और मैं दीन के नाम पर जान के सिर्फ एस्केपिज़्म के नाम पर मैं आधी रात तक बाहर रहूँ, तो इसका मतलब कि मैंने अपने शौहर को हक नहीं दिया। बिल्कुल यही चीज़ होती है, जब हम चीज़ों को सवार कर लेते हैं ना अपने ऊपर, तो उससे ख़राबी होती है। अमल तो और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं इस पर। अल्लाह के नबी ने बहुत अच्छे तरीके से जगह चूज़ की। अब दुश्मन मुसलमानों और मदीना के दरमियान हायल हो गया। अब आप जहन में रखिए कि ये मंज़र कैसा होगा। आपने लश्कर को मुरतब फरमाया, क्या ज़रूरत थी इसकी? ऑर्गेनाइजिंग, लोगों को बताइए कि आपने क्या करना है। मेरा ख्याल है आपके सामने तो ये 2-4 घंटे पढ़ाती हूँ ना, और बाकी जो 24 घंटों में वक्त है उसमें आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ इस काम पे जाता है, तरतीब, कोर्सों की प्लानिंग, आपका क्या काम, आपकी क्या ड्यूटी, आपकी ट्रेनिंग, दिस दैट करते हुए, क्योंकि इसके बगैर काम ठीक नहीं होते। तरतीब, आगे कौन होगा, पीछे कौन होगा, इधर किसने बैठना है। देखिए आप पूरा स्कूल बना लें और लोगों को बताएं ना कि रिसेप्शन पे किसने बैठना है, इधर किसने बैठना है, हों आप सारे लोग, होगा क्या, जहाँ देखें आप ग्रुप का ग्रुप बैठे होंगे, काम कर रहे हैं हम, भाई किचन में गए आप, उधर गए कहीं नहीं गए, बस इधर हैं। क्यों? कि लोगों को उनके काम नहीं बताए जाते। तो अल्लाह के नबी ने हमें यहाँ से प्लानिंग करना और ड्यूटीज़ असाइन करना सिखाया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की कमान में आपने वही जो एक छोटा सा पहाड़ था ऐनैन नाम का, उस पर جو بعد میں جبل رمات کے نام پر معروف ہوا، 50 لوگ مقرر کیے، حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار مار کر دور کریں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں. آپ نے ان کو تاکید کی کہ جب تک میرا حکم نہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں. ہائی لائٹ کر لیں اس کو. یہ ہے وہ پیک نقطہ جس کی وجہ سے غزوہ احد میں شروع میں فتح ہوئی، لوگوں نے مان لیا، اور اسی مقام کو چھوڑنے کی وجہ سے جھٹکا لگ گیا. غزوہ بدر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو جب تک اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا نا کہ تم نے اب آگے سے جواب دینا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، کھڑے رہے اپنی جگہ پہ، جسٹ ڈیفینسو وار کرتے رہے. پھر اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ شدو، اب تم بھی چڑھ دوڑو، تو چڑھ دوڑے اور تھوڑی دیر میں دشمنوں کی صفوں کی صفحے گرا دی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے اس کو مانے. حکم نہیں ہوتا، وہ ایک تجربہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریسپشن نہیں چھوڑنی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے ریسپشن نہیں چھوڑنی، آپ نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑنی. کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ آپ کے پاس پہنچے گا، کوئی آئے نہ آئے، کوئی ہو نہ ہو، آپ کو نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیے ڈسپلن کہاں رہتا ہے، کوئی آپ کی پہنچ سے نکل کے جا ہی نہیں سکتا. 110% ریزلٹس آپ دے سکتے آنے والوں اور جانے والوں کے، اور آپ کے تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی، بس ادھر گئی تھی، کھانا کھانے گئے تھے. تو ایک منٹ میں چور آئے اور کوئی بھی چیز لے کے چلا جائے تو بڑی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں. خیر، اب مشرکین بھی کوئی برے نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے لشکروں کو ترتیب دی، میدان جنگ کی طرف بڑھے. ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں اور لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں. کس کا طریقہ ہے عورتوں سے گانے گوا کے جذبے دلانا؟ کفار کا طریقہ ہے. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ پیچھے غزوہ بدر میں سن چکے ہیں، اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، تکبیر کی آوازیں ہوتی تھی، اللہ اکبر کی ہوتی تھی، اور یہ جوانوں کو غیرت دلانے کے لیے شعر پڑھا رہی تھی. اور دیکھیں شعر بھی کتنے بےہودہ ہیں. کہنے لگی، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، اگر پیش قدمی کرو گے، یعنی تم آگے جا کے مسلمانوں کے خلاف لڑو گے، تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. فرق سمجھ آ رہا ہے مسلمان کے میدان جنگ میں آنے کا اور کافر کے. اور جھنڈا اٹھانے والوں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھو بنی عبد الدار، دیکھو پشت کے پاس دار، خوب کرو شمشیر کا وار. تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اتنا موٹیویشنل دین ہے نا، ایک دفعہ آپ کو اسلام مل گیا نا، تو آپ کو یہ گانے شانے گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بے خطر کود پڑیں گے. ابراہیم کو کسی نے گانا گا کے جوش نہیں دلایا تھا کہ آگ میں کود جاؤ. طارق بن زیاد کے پیچھے کوئی نغمے نہیں چل رہے تھے کہ اس کے جوش میں وہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت موسیٰ کو پیچھے کوئی موسیقی پہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ سمندر میں کود پڑو. یہ مشن کی محبت ہوتی ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے دین میں سچے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ سکتی، سست نہیں آپ ہو سکتے. یہ قرآن کی کلاس میں بھی جب ہم سو جاتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، آپ خود ڈھونڈیے. لیکن یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنی ذات پہ لے کے بیٹھا ہوگا نا، وہ دنیا کے ہر میدان میں آگے نکل جائے گا.